उत्पत्ति अध्याय 39। अपने पुत्रों के संबंध में इज़राइल की भविष्यवाणी। तब याकोब ने अपने बेटों को बुलाकर उनसे कहा, तुम सब एक साथ आओ ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे साथ अब क्या क्या होगा। याकोब के पुत्रों सुनो तथा अपने पिता इज़राइल की बातों पर ध्यान दो। रियूबेन, तुम तो मेरे बड़े बेटे, मेरे बल एवं मेरे पौरोष का फल हो, प्रतिष्ठा और शक्ति का उत्तम भाग तुम ही हो, जो अशांत पानी के समान उग्र है, इसलिए तुम महान ना बनोगे, क्योंकि तुमने अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया। शिमोन तथा लेवी भाई भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा का साधन है, ऐसा कभी ना हो कि मुझे उनकी सभा में जाना पड़े, मैं उनकी सभाओं में ना जुड़ूं, क्योंकि गुस्से में उन्होंने मनुष्यों को मार डाला तथा सनक में उन्होंने बैलों की नसें काट दी। शापित है उनका क्रोध जो भीषण है और उनका ऐसा गुस्सा जो निर्दयी और क्रूर है। मैं उन्हें याकोब में बांट दूंगा और उन्हें इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। यहूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ तुम्हारे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तुम्हारे पिता की अन्य संतान तुम्हारे सम्मान में झुक जाएंगे। यहूदा तो जवान सिंह के समान है। हे मेरे पुत्र, तुम अपने शिकार पर खड़े शेर के समान हो, जो आराम करने के लिए लेटता है, किसमें उसे छेड़ने का साहस है। यहूदा से राजदंड कभी भी अलग ना होगा और ना ही उसके वंश से शासन का राजदंड दूर होगा, जब तक वह ना आए और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन रहेंगे। अपने गधे को दाखलता से बांध देता है तथा गधे के बच्चे को उत्तम दाखलता पर बांधेगा। उसने अपना वस्त्र दाख मधु में धोया है तथा बाहरी वस्त्र दाख रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली तथा उसके दांत दूध से भी अधिक सफेद होंगे। जेबुलून सागर के किनारे रहेगा और इसका समुद्री तट जहाजों के लिए सुरक्षित होगा, और उसकी सीमा सीदोन देश तक फैल जाएगी। इस्साकार एक बलवंत गधा है, वह पशुओं के बाड़े के बीच रहता है। जब उसने देखा कि आराम करने की जगह ठीक है, कि भूमि सुखदाई है, तब उसने अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुका दिया और वह बेगार का दास बन जाएगा। दान अपने लोगों का न्याय इज़राइल के एक गोत्र जैसा करेगा। दान मार्ग का एक सांप होगा, पथ पर एक सर्प, वह घोड़े की एड़ी को डसता है और सवार अचानक गिर जाता है। हे यहावे, मैं आपके उद्धार की बाट जोहता हूँ। गाद पर छापा मारेंगे, किंतु वह भी उनकी एड़ी पर मारेगा। आशेर का अन्न बहुत उत्तम होगा और वह राजसी भोजन उपलब्ध कराएगा। नफ्ताली छोड़ी हुई हिरनी के समान है जो सुंदर बच्चों को जन्म देती है। योसेफ तो फल से भरी एक शाखा है, जो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, जो बाड़े के सहारे चढ़ी है। धनुष चलाने वाले ने धनुष चलाया और तीर छोड़ा और लगकर दर्द हुआ, परंतु उसका धनुष दृढ़ रहा, उसकी बाहें मजबूत रही। यह याकोब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से था, जो इज़राइल के चरवाहे तथा चट्टान है। तुम्हारे पिता के परमेश्वर की ओर से, जो तुम्हारे सहायक है, तथा उस सर्वशक्तिमान से, जो स्वर्गीय आशीषों से तुम्हें आशीषित करेंगे, वे आशीषें जो नीचे गहराइयों से आती हैं। स्तनों तथा गर्भ की आशीषें देगा। तुम्हारे पिता की आशीषें तो मेरे पूर्वजों के पहाड़ों से बढ़कर हैं, ये अनंत पर्वतों से संबंधित आशीषों से बढ़कर हैं। ये ही आशीषें योसेफ पर प्रकट होकर उसके सिर का मुकुट बने, जो सब भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ है। बिन्यामीन एक क्रूर भेड़िया है, सवेरे वह अहेर का सेवन करता है, शाम को वह लूट सामग्री बांटा करता है। ये सभी इज़राइल के 12 गोत्र हैं, उनके पिता ने उनके बारे में तब कहा जब वह उन्हें आशीष दे रहे थे, और उनमें से एक एक को इन्हीं वचनों से आशीष दी। याकोब की मृत्यु। तब इज़राइल ने कहा, मुझे मेरे पूर्वजों की उसी गुफा में दफनाना जो एफ्रोन हित्ती के खेत में है, कनान देश में उस कब्रिस्तान में जो माकपेला के खेत में ममरे के पास है जिसे अब्राहम ने हित्ती एफ्रोन से खरीदा था। वहां उन्होंने अब्राहम तथा उनकी पत्नी सारा को दफनाया था, वहीं उन्होंने यित्साहक तथा उनकी पत्नी रेबिका को दफनाया तथा वहीं मैंने लिया को भी दफनाया है। वह खेत गुफा सहित हित्तियों से खरीदा है। जब याकोब अपने पुत्रों को ये आदेश दे चुके, तब उन्होंने अपने पैर अपने बिछोने पर कर लिए तथा आखिरी सांस ली, वे अपने पूर्वजों से जा मिले।